તારીખ 11-12-1994 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 86.
किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण भी अंतर भेद जागृति हो जाए तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है। तथारूप योग माने यथार्थ रूप से आत्मकल्याण की भावना हो, जिस मुमुक्षु जीव को आत्मकल्याण की भावना यथार्थ रूप से हो। भावना तो सबों को होती है, लेकिन ऊपर ऊपर से होती है तो भावना सफल नहीं होती है। यथार्थ रूप से होती है तो सफल होती है। यथार्थ रूप मैंने अंतर से उठी हुई है, ऐसी भावना जिसको यथार्थ रूप से उठती है उसको सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग मिलता है, तो उपादान और निमित्त दोनों का मेल खाता है। उसी जीव को सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग में अंतर्भेद जागृति उत्पन्न होती है। अंतर्भेद जागृति का दो प्रकार से अर्थ घटन कर सकते हैं कि जिसकी मलिन परिणति अंतरंग में जमी हुई है उसको भेद करके छेद करके जो जागृति आती है उसको भी अंतर्भेद जागृति कहते हैं, और अंतर का भेद मैंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति में कितना लाभ होता है, सर्वदुख और सर्व क्लेश से मुक्त होने का लाभ कितना बड़ा है, ऐसा भेद माने रहस्य, अंतर का रहस्य जिसको समझ में आए और जागृति आ जाए, दोनों एक पर्याय के पहलू हैं। एक नास्ति वाला पहलू है, एक अस्ति वाला पहलू है। अगर ऐसा हो जाए तो सत्पुरुष के योग में ये संभवित है, और जिसको अंतर से आत्मकल्याण की भावना हुई उनको प्रत्यक्ष योग में ऐसी जागृति आती है, और उसको ऐसी जागृति आने से फिर इसके लिए ऐसा मोक्ष के लिए मोक्ष दूर नहीं है, ये गारंटेड बात है। कृपालु देव ने वो गारंटी कर दिया कि अगर यहाँ तक कोई जीव आ गया तो उनके लिए हम देखते हैं कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति जिसको होती है, जिसके परिणाम की ऐसी स्थिति होती है, उनकी क्या स्थिति होती है उसका वर्णन आगे जाके करते हैं।
जिसको सत्पुरुष का योग योग रूप में अभी नहीं परिणत हुआ है तो क्या उसको अंदर भी जागृति हो सकती है?
हो ही नहीं सकती, वो योग अयोग है तो जागृति आने का सवाल नहीं है, वो नहीं बनता।
सत्पुरुष का योग जब योग रूप होता है तो जीव के परिणाम में क्या ऐसी बात आती है जो ये बात उसको अंदर परिणाम में ये आ जाता है कि मेरे को सत्पुरुष का योग हो गया है?
सत्पुरुष की एक तो पहचान आ जाती है और उनको लगता है कि ये कोई अपूर्व योग है, मेरा आत्महित करने के लिए कोई अपूर्व मौका मिला है, ऐसा मौका कभी मुझे नहीं मिला है, तो इसका पूरा पूरा लाभ मुझे लेना चाहिए।
लेना चाहिए कि पूरा लाभ ही लेगा। लेना चाहिए, मैं तो फ्यूचर की बात आ रही
हूँ। नहीं, अभी अभी लेना चाहिए। फ्यूचर में लेना चाहिए की बात नहीं, अभी जो मौका तो अभी वर्तमान में मिला है तो लाभ भी अभी लेना चाहिए, अभी ले लेना चाहिए मुझे। तो शीघ्रता से मैं मेरा काम कर लूं, बस ऐसा उनको अंदर से जोर आता है, फोर्स आता है।
पर मेरा कल्याण अब निश्चित है ऐसा भी अंदर में।
हाँ, उनको वो कर लिया था तो मोक्ष का भणकार अंदर से सुनने में आता है। अभी मेरा मोक्ष हो जाएगा, अब तो मेरा मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा मोक्ष का भणकार अंदर में से आने लगता है, या अंदर में वो सुनाई देता है। भणकार तो सुनने की चीज होती है, वो सुनाई देता है।
जिसको इस प्रकार का भणकार आया हो तो क्या उसको ऐसा भाव चलेगा कि हम किसी भी उदय प्रसंग में रहे हम तो बच ही जाएंगे?
ऐसी बात,
अब हम तो पूरा छुटकारा है, कहीं भी प्रवर्तन कर सकते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत सावधान होते हैं। वो बात जरूर है कि सावधान बहुत हो जाते हैं, कहीं भी स्वच्छंद करने की भूल से भी वृत्ति नहीं आती है। स्वच्छंद प्रवृत्ति, निरर्गल प्रवृत्ति की वृत्ति उनको नहीं आती है। आत्मकल्याण के लिए बहुत जागरूक है, जागरूक बोलते मैंने उसकी जागृति बहुत है, ऐसा होता है। तो उदय प्रसंग में हम कैसे भी उदय प्रसंग में रहे, इसका मतलब वो हुआ कि तो उदय प्रसंग की कहीं ना कहीं रुचि है। तो ये तो पोल हो गई बात की, तो रुचि है तो जागृति नहीं रहेगी। जिसको किसी भी प्रकार के उदय में सुख की रुचि है, सुख की अपेक्षा है, उनको तो ये बात होने वाली है ही नहीं। शुद्धांतकरण में वो बात है कि कहीं भी संसार में किसी की भी पदार्थ में किसी भी प्रसंग में सुख की आशा अपेक्षा जहाँ तक रहती है वहाँ तक ये जागृति आने वाली नहीं। कहीं भी पर्याय का विकास नजर आता हो तो भी गौण हो जाए, इससे क्या मुझे तो पहुंचना है पूर्णता तक। अभी क्या हो गया है, इतने में क्या हो गया, इतने में क्या हो गया, इतने में क्या हो गया, वही लगेगा जो कुछ हुआ उसमें वो लगेगा कि इतने में क्या हो गया, कि कुछ हुआ ही नहीं। उसी का नाम पूर्णता का लक्ष्य है। इतना तो किया, उतना तो हुआ, उतना तो किया, ये रुकने का प्रकार है, और जो रुकेगा वो गिरेगा भी, जो रुकेगा वो गिरेगा, इसलिए कहीं रुकने का बात है ही नहीं।
मतलब मोक्ष की दृष्टि हमेशा आगे रहती है, पीछे की तरफ नहीं रहती है।
नीचे वाला नीचे जाएगा, ऊंचे वाला ऊंचे जाएगा। जिसकी दृष्टि नीचे है नीचे चला जाएगा। संसार में हम कभी ऐसा नहीं करते, संसार में जो भी प्रवृत्ति करते हैं तो ऊपर वाले को देखते हैं। तो पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अभी बहुत हो गया, अभी चलो अब कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करते, अभी वो करो वो करो वो करो। फिर टाटा बिरला को देखने लगता है, करोड़पति होने के बाद क्या देखता है, टाटा बिरला को देखता है, और टाटा बिरला होता है वो फिर फोर्ड को देखता है, वो हाँ वर्ल्ड लेवल को देखता है, पहले सिटी लेवल को देखता है, देखा कि सिटी में तो अपना नंबर आ गया तो कहे इंडिया लेवल पर अपने को जाना है, इंडिया लेवल पर आ गया तो कहे वर्ल्ड लेवल पर हमारा नाम आना चाहिए। वहाँ ऊपर क्यों देखता है, वो जो दातन बेचता है उसके सामने नहीं देखता है कि फुटपाथ पर बैठे बैठे दातन बेचते हैं, हमारा तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई देखता थोड़ा है, कोई नहीं देखेगा। अगर ये देखेगा तो नीचे की दृष्टि वाला नीचे जाएगा, ऊपर की दृष्टि वाला ऊपर जाएगा, वो सीधा हिसाब है।
अगर कोई जीव हमको इस प्रकार की भ्रमणा में हो कि हमको लक्ष्य तो है, तो ये भ्रमणा को चेक करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
भ्रमणा को चेक करने के लिए वो देखे कि अपना फोर्स लगातार रहता है कि नहीं, जो बल है कहाँ कार्य करने का वो लगातार रहता है या टूट जाता है, पता चल जाएगा। अच्छा, और वो जो उदय के परिणाम है वहाँ सुख की आशा अपेक्षा आती है कि नहीं आती है वो देख ले, पता चल जाएगा। और जो कुछ होता है इसका महत्व आता है या गौण हो जाता है वो भी देख ले। तो भ्रम टूट जाएगा, बस भ्रम टूट जाएगा, वो उसका ऑब्जर्वेशन से भ्रम टूट जाएगा, अवलोकन करने से पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। जो अपनी भूमिका को नहीं देखता है कि हम किस भूमिका में गुजर रहे हैं, वो फिर आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा? उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है इसका पता भी उसको नहीं लगेगा, तो फिर तो अंधेरे में चलता है। कहीं भी अंधेरे में चलो, ऐसे तो मार्ग हाथ में आने वाला नहीं है। मार्ग तो एकदम सुव्यवस्थित है, चलना चाहिए एक एक कदम बराबर सच्ची दिशा में, सच्चे मार्ग में। भले थोड़ा काम हो गए लेकिन सच्चा होना चाहिए, गड़बड़ करने से दूर हो जाएंगे, उतना परिश्रम बढ़ जाएगा। अब कहते हैं
जैसे वस्तु पूर्ण है तो उसके आश्रय से निकला हुआ प्रयास अपूर्ण कैसे होगा?
सवाल ही नहीं रहता। वस्तु पूर्ण है, हमारा लक्ष्य और ध्येय भी पूर्णता का है, फिर ये दोनों यथार्थ लक्ष्य हो गया। एक तो वस्तु का लक्ष्य, पूर्ण वस्तु का लक्ष्य, एक पूर्ण अवस्था का लक्ष्य ध्येय, यथार्थ लक्ष्य हो गया। इनको बोलते हैं यथार्थ लक्ष्य हो गया, उनको कहीं चुकने की जगह नहीं है, वो अपने मार्ग में बराबर आगे बढ़ते ही जाएगा। यथार्थता आनी चाहिए, मुमुक्षु की भूमिका की यथार्थता ही आगे बढ़कर के सम्यक्त्व के रूप में परिणमित हो जाती है। सम्यक्त्व का मूल कारण मुमुक्षु की भूमिका की यथार्थता है। यथार्थता नहीं आई तो अयथार्थ रूप से कुछ भी कर लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कोई भी क्रिया कर लो, कोई भी भक्ति दान पूजा कुछ भी कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो यथार्थता का ये दो बात है कि पहले पूर्णता का लक्ष्य आए, फिर पूर्ण वस्तु की पहचान आ जाए और पहचान के काल में लक्ष्य इसका भी हो जाए। तो एक आश्रय स्थान है, अपना जो पूर्ण वस्तु है वो आश्रय स्थान है, और जहाँ पहुँचना है वो पहुँचने के हिसाब से आखिर का ध्येय है। आश्रय के आधार से, आश्रय के परिणमन के कारण से पूर्णता के प्रति जाने का क्रमशः आगे बढ़ने का स्वयं हो जाता है, स्वतः हो जाता है। अब कहते हैं कि ऐसी आत्म जागृति होती है तो मोक्ष समीप आता है, और जिसको मोक्ष समीप नहीं है उसके परिणाम कैसे होते हैं? अन्य परिणाम में जितनी तादात्म वृत्ति है, अन्य परिणाम मैंने आत्म परिणाम को छोड़ करके उदय भाव के किसी भी परिणाम में तदात्म वृत्ति मैंने रस वही आत्मा है ऐसी वृत्ति को तदात्म वृत्ति कहते हैं। तद मैंने वही आत्मवृत्ति, उसी को ही आत्मा मान ले, मैंने तीव्र रस से परिणमन होवे। अन्य परिणाम में जितना तीव्र रस वाला परिणाम होता है उतना जीव से मोक्ष दूर है, और जितना रस टूटा इतना मोक्ष समीप आएगा। वो जागृति के कारण से रस टूट जाता है। जितनी अन्य परिणाम के काल में आत्म जागृति रहती है उतना वहाँ रस भंग होता है, उस परिणाम का अन्य रस का भंग हो जाता है तो मोक्ष समीप आता है। और तदात्म वृत्ति से रस तीव्र रहता है तो मोक्ष उनको दूर है। यदि कोई आत्मयोग बने, आत्मजोग बने, तो इस मनुष्यपणा का मूल्य किसी भी प्रकार से न हो सके ऐसा है, इतना है। मनुष्यपणा का मूल्य कितना, तो वो अमूल्य चीज है। कब, के भीतर में आत्मयोग बने तो आत्मकल्याण की यथार्थ भावना और सत्पुरुष का योग, दो बात एक साथ मेल खा जाए तो ये मनुष्य भव, एक मनुष्य भव अनंत काल का निवेड़ा ले आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मनुष्य भव की कीमत फूटी कौड़ी के बराबर नहीं है, क्योंकि वो तिरंज गति में प्राय चला जाएगा, नुकसान का कारण हो जाएगा। मनुष्य भव का मूल्य कितना, कि आत्मकल्याण का योग बन जाए तो इसका मूल्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है, उतना बड़ा है। अगर आत्मकल्याण का योग नहीं बना तो ये तो कुत्ती भी अपने बच्चे को पिल्लू को खिलाते पिलाती है, हम क्या ज्यादा करते हैं। अगर हम हमारे परिवार को ठीक रखते हैं तो क्या तिरियन जैसा नहीं करता है, तो वो भी उतना तो करता है। तो इससे कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, मनुष्यपणा का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, मैंने बिल्कुल मूल्य नहीं है।
आत्मयोग के
लिए दो फैक्टर्स बताया, आत्मयोग में दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स में एक फैक्टर मिसिंग होगा तो आत्मयोग नहीं। क्यों, कि अनंत बार सत्पुरुष का योग भी मिल चुका है, लेकिन वो सत्संग मिलने पर भी सफल नहीं हुआ है, तो बात 609 पत्र में लिया है, मिथ्या आग्रह, प्रमाद और ऐसे चार कारण लिया ने, और स्वच्छंद और इंद्रिय विषयों की उपेक्षा नहीं की हो तो प्राप्त सत्संग भी सफल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। पर अपने आत्मकल्याण की तीव्र भावना हो, अंतर से उठी हुई भावना हो तो आत्मजोग बन जाता है, तो उनको सत्पुरुष का योग भी मिल जाता है। सत्पुरुष है कि नहीं है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न वो सामने आता है ना कि सत्पुरुष नहीं है क्या करें, लेकिन हम अगर हमारे आत्मकल्याण के लिए लालायत हैं पूरे के पूरे तो सत्पुरुष का योग बैठता है। सुगानी जी का तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है, पता नहीं था कि गुरुदेव सोनगढ़ में विराजमान थे, पता ही नहीं था, फिर कुदरत बंदी हुई है, कुदरत ने भेजा किसी को, आत्मधर्म मिल गया और चले गए। 600 माइल की मुसाफरी, करीब 800-900 किलोमीटर है, अनजाने प्रदेश में गुजराती भाषा जानते नहीं थे, गुजरात में आए नहीं थे, फिर क्यों दौड़ के चले आए? और आने की उतनी अनुकूलता भी नहीं थी उन दिनों में, जिन दिनों में वो आए उन दिनों में उतनी अनुकूलता नहीं थी आने की। लेकिन सबको गौण करके कैसे आ गए? आत्मकल्याण की भावना फाटम फाट भावना थी, तो योग बैठ गया। ढूंढने को निकलने के लिए परिस्थिति नहीं थी कि हम ढूंढने को निकले कहीं जाए, फिर भी एक कुदरत की देन है, कुदरत बंधी हुई है, उनको योग बैठ जाता है, उसको आत्मजोग कहने में आता है और उसका शीघ्र कल्याण हो ही जाता है। एक दफे ऐसा आत्मजोग बन जाए तो
जैसे अगर कोई जैसे होता है सत्पुरुष का योग अभी नहीं है, ऐसा कोई स्वच्छंद को पकड़ लेता और वर्तमान में हाल में विराजमान सत्पुरुष की खोज नहीं करता है तो उसके स्वच्छंद रूप परिणमन किस प्रकार चलता है? और एक वास्तव में किसी को अंतरंग से लगता है सत्पुरुष हमको योग नहीं मिल पा रहा है तो यथार्थ बने का परिणमन क्या होता है?
जिसको ऐसा लगता है वो भी नहीं है, उनको तो आत्मकल्याण करना ही नहीं है, उसका नियत ठीक नहीं है, तो उनका तो हित होने का सवाल नहीं होता। वो तो अपनी मनमानी क्रिया करेगा, या शास्त्र पढ़ाई की क्रिया करेगा, या कोई संप्रदाय की और क्रिया, पूजा भक्ति आदि करेगा, उपवास आदि करेगा, कुछ भी करेगा। वो तो अनंत काल से स्वच्छंद करता आया है, वो स्वच्छंद ही करेगा। लेकिन जिसको अपना आत्मकल्याण वास्तव में करना ही है, उनको तो ये भाव आए बिना उठेगा नहीं। कल बात किया था कि जिसको आत्मकल्याण करना है उनको अपने ध्येय के प्रति कार्य करने की लगन रहती है अंतर में, बाहर में उसको सत्पुरुष की खोज होने की लगन रहती है, दो बात एक साथ पैदा हो ही जाती है, तो उसको तो मेल खा जाएगा कहीं ना कहीं से। जिसको पानी की तृषा लगी हो वो तो पानी ढूंढे बिना रह सकता नहीं, उनको ये पता है कि अगर पानी कुछ लिमिटेड समय में नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा और मुझे मरना नहीं है, मैं मर जाऊंगा इसका पता चल जाता है और किसी हालत में किसी कीमत पे मुझे नहीं मरना है। एक गिलास पानी का रेगिस्तान में कितना भी पैसा लग जाए, अगर प्राण बचता है तो कोई हिसाब गिनता नहीं है, वरना पानी बह जाता है, बाथरूम में चला जाता है, कोई देखता नहीं है कि कितना पानी निकल गया। तो पानी की कीमत नहीं भी है और है भी, समय समय की बात है। ऐसे सत्पुरुष होते हैं जिसको कीमत नहीं है, उसकी वाणी जो है पानी की तरह बह जाती है, बहने दो, कौन सुनते हैं। और जिसको पानी बिना प्राण छूटता है वो तो एक एक बिंदु की कीमत करेगा, वो एक एक वचन की कीमत करेगा।
जैसे अगर कोई जीव ऐसा भी होता है कि वो उसको अंदर में ये चाहता है कि हमको सत्पुरुष की खोज चल रही है, पर सामने सत्पुरुष रहते हैं पर वो पहचान नहीं पाता है, तो उसमें क्या ऐसी भूल रह जाती है अपनी समझन की जिसके कारण ये मिथ्या भ्रांति उसको है, उसकी भूल कहाँ है और ये भूल को कैसे?
नहीं, खोज
वो ये समझ के रखा है कि मुझे खोज है, मुझे मार्ग की खोज
है ही नहीं। खोज हो और खोजक वृत्ति अंदर से हो तो पहचान का नेत्र खुल जाता है, पहचान करने का नेत्र खुल जाता है, लेकिन अंदर से नहीं होती है। तो पहचान भी नहीं हो रही है। बात दरअसल में ऐसी है कि अंदर से जरूरत कितनी लगी है, ये असली बात हो है। अंदर से पूरी की पूरी जरूरत लगी हो, उनकी पात्रता प्रकटने में देर नहीं लगती, उनकी पात्रता शीघ्र प्रकटती है और शीघ्र उनको पहचान भी होती है। गुरुदेव को परिणमते हुए देखा था, कहते हुए सुना था, उतनी बात नहीं थी। ज्ञान और राग भिन्न है, ऐसे कहने वाले को वो भिन्नता में परिणमित होते हुए देख लिया, बस बात खत्म। पहचान भी होगी और भिन्नता का जो भाव भाषण होना चाहिए वो भाव भाषण भी हो गया। दोनों बात होने से पुरुषार्थ एकदम जागृत हो गया, परिणाम आ गया, घंटों का काम हो गया। जो काम अनंत काल से नहीं हुआ है वो काम घंटों में हो सकता है, इसका ये सबूत है, हो जाता है। अगर जीव को सही लगन होती है तो ताकत तो बहुत पड़ी है भीतर में, सबके भीतर में वो ताकत पड़ी है। हमको ऐसी आड़ नहीं लगानी चाहिए कि हम तो मामूली आदमी है, मामूली जीव है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो मोही है, क्रोधी है, रागी है, वैसे हैं, संसारी है, क्या करें। ऐसी आड़ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम भी तीन लोक का नाश होने वाले हैं, ये अंदर से आना चाहिए। हमने किसी मुमुक्षु को कहा था कि आप जो है क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहेंगे कि भाई हम कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता में तो पूरे टॉप लेवल के होने चाहिए, नहीं इससे आगे भी फिर इंडिया के टॉप लेवल में, फिर वर्ल्ड के टॉप लेवल में हम आना, हमारी गिनती होनी चाहिए। बस हो गया, अरे इस मार्ग में आ जाओ तुम तीन लोग के टॉप लेवल में आ जाओगे। इंडिया पिंडिया क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये जो दुनिया है वो तो भरतखंड का एक टुकड़ा है। हमारे जैन आगम के अनुसार ये जो हमारी जाने मानी दुनिया है जहां हम आवागमन करते हैं हवाई जहाज से, ये तो भरतखंड का आर्यखंड का एक टुकड़ा है। अनार्यखंड तो बाकी है अभी, भरतखंड में आर्यखंड है, भरतखंड वो आर्यखंड है। छह खंड है ना जो चक्रवर्ती के अंडर में होते हैं, ये छह खंड में एक भरतखंड आर्यखंड है, उसका एक टुकड़ा है ये, तो इतना बड़ा है। तीन लोग तो बहुत बड़ा है, असंख्य तो देव है, उतने नारकी है, संख्यात मनुष्य है, जितने भी कुछ है। मार्ग तो ऐसा चुनो कि फिर इसके आगे कुछ हो, कोई बात ही बाकी नहीं रहे। जब अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही है, ये एम्बिशंस होती है ना, महत्वाकांक्षा अधूरी क्यों, फिर जब महत्वाकांक्षा करनी ही है तो फिर अधूरी क्यों करें, पूरी की पूरी करें, ये बात है। पुरुषार्थ की ताकत है भीतर में, अनंत वीर्य का पिंड खुद है, बहुत ताकत है। ऐसे भी हमारे इतिहास में जीव हो गए हैं, अनंत काल निगोद में रहे, सब परिणाम के संस्कार निगोद के, कभी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार चार इंद्री, पंचेंद्री हुआ ही नहीं हो, पहले पहले मनुष्य हो गया। बुद्धिपूर्वक कषाय की मंदता होते ही निगोद से निकल करके मनुष्य हुआ। 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन पा करके केवल ज्ञान, गुणी दशा और केवल ज्ञान, 8 साल की उम्र में सब तीनों काम, यथार्थ मुमुक्षुता, सम्यक दर्शन, गुणी दशा और केवल ज्ञान, आठ साल की उम्र में, और आयु लंबा नहीं हो तो आठ साल की उम्र में सिद्ध बने, ऐसे ऐसे जीव बने हैं। और हम कहते हैं हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, हमारा बल नहीं चलता है, हमारा वो नहीं चलता है। तो वो ढीली पूछी जो बात है वो बात छोड़ देने की है, वो बात रखने की। हमारे वो भी हमारी जाति के जीव थे, कोई दूसरी जाति के नहीं थे, हमारी जाति के थे। हमने तो काफी सुना, काफी पढ़ा, वो लोग तो निगोद से सीधे आए थे, भगवान के समोसरण में आठ साल।
श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक